ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। नई सरकार गठन के सिलसिले में राजनीतिक पार्टियां विचार विमर्श में है व्यस्त। सरकार गठन और शक्ति के बंटवारे के विषय में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा और माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड के बीच हुआ विचार विमर्श। समाज रूपांतरण के लिए संचार जगत की भूमिका महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी का कथन। और भारतीय राज्य सिक्किम में भारतीय सेना के एक ट्रक के गहरी खाई में गिर जाने से 16 जवानों की मौत। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी द्वारा सरकार गठन के लिए राजनीतिक दलों को दी गई समय सीमा समाप्त होने में महज 2 दिन बाकी होने के कारण राजनीतिक पार्टियां सरकार गठन के गृह कार्य में जुटी हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा और नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड के बीच शक्ति के बंटवारे के संबंध में आज शाम को बालवाटार में विचार विमर्श हुआ। इससे पूर्व प्रधानमंत्री देउवा और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष महंत ठाकुर के बीच बालवाटार में ही बातचीत हुई थी। प्रधानमंत्री देउवा और नेपाली कांग्रेस के पदाधिकारियों के बीच भी आज दोपहर सरकार का नेतृत्व करने के मुद्दे के साथ साथ समसामयिक विषयों में विचार विमर्श हुआ था। बता दें कि आज सुबह नेपाली कांग्रेस के नेता प्रकाश मान सिंह ने नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड से मिलकर नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार गठन करने का आग्रह किया था। नेता सिंह के स्वकीय सचिव यूपी लामिछाने से मिली जानकारी के मुताबिक नेता सिंह ने सरकार के कार्यकाल को बांटकर पहले प्रधानमंत्री के रूप में कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा के नेतृत्व में सरकार गठन में सहयोग करने का आग्रह किया था। साथ ही अन्य राजकीय पदों के बंटवारे का प्रस्ताव भी नेता सिंह ने अध्यक्ष प्रचंड के समक्ष रखा था, लेकिन अध्यक्ष प्रचंड ने इस बात के जिक्र के साथ कि 5 दलीय गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस कर चुकी है, इसलिए सरकार का नेतृत्व पहले उन्हें मिलना चाहिए। ये बात नेता सिंह के स्वकीय सचिव लामिछाने ने रेडियो नेपाल को बताई। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने और समाज के रूपांतरण के लिए संचार जगत की भूमिका महत्वपूर्ण है। आज सुर्खेत के वीरेंद्र नगर में आयोजित नेपाल पत्रकार महासंघ की साधारण सभा के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति भंडारी ने कहा कि देश के व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलनों में पत्रकारिता जगत ने महत्वपूर्ण योगदान किया है। पत्रकारिता को और मर्यादित बनाने का आग्रह करते हुए राष्ट्रपति भंडारी ने इस बात पर जोर दिया कि कभी भी राज्य के द्वारा प्रेस पर अंकुश नहीं लगाया जाना चाहिए। कार्यक्रम को कर्नाटक प्रदेश के मुख्यमंत्री जीवन बहादुर शाही, नेकपा एमाले के महासचिव शंकर पोखरेल, नेकपा माओवादी केंद्र के उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर मेहरा, महासंघ के केंद्रीय अध्यक्ष विपुल पोखरेल लगायत ने संबोधित किया था। साधारण सभा में राष्ट्रीय समाचार समिति के अध्यक्ष धर्मेंद्र झा को 1 लाख नकद राशि का कृष्ण प्रसाद भट्टराय राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान किया गया। कार्यक्रम में करीब 2 दर्जन पत्रकारों को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने कहा कि फौजदारी न्याय की प्रभावकारिता और कानूनी शासन की सुनिश्चितता होना जरूरी है। सरकारी वकीलों के 4th राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री देउवा ने कहा कि वर्तमान परिवेश में कानूनी शासन बहाल करने के लिए स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता जैसी चीजें जरूरी हैं। कार्यक्रम में कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्के ने कहा कि निष्पक्षता, सक्षमता और प्रभावकारिता के साथ कानून की सुनिश्चितता के लिए और फौजदारी न्याय की केंद्रीय भूमिका में मौजूद महान्यायाधिवक्ता कार्यालय को व्यावसायिक, प्रभावकारी और विश्वस्त संस्था के रूप में स्थापित करने के लिए 4th सम्मेलन ने अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान किया है। निर्वाचन आयोग ने बीते मार्गशीर्ष 4 गति के प्रतिनिधि सभा व प्रदेश सभा चुनाव में सहभागी होने वाले राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को परिणाम घोषित होने के 35 दिन के अंदर चुनाव खर्च का विवरण पेश करने का तकाजा किया है। आयोग के प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पोर्टल के मुताबिक निर्धारित समय पर चुनाव खर्च का विवरण पेश न करने वाले विजयी और पराजित दोनों ही तरह के उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री उमा रेग्मी ने कहा कि नेपाल में व्यापक कानून बनाया भी जाता है और लागू भी किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद अपराधी कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं और महिलाएं हिंसा का शिकार होती हैं। मंत्री बनने के बाद से अब तक किए गए कार्यों को सार्वजनिक करने के लिए आज मंत्रालय में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री रेग्मी ने कहा कि न केवल महिलाओं बल्कि यौनिक अल्पसंख्यकों, विकलांगों और बच्चों के ऊपर भी हाल के दिनों में हिंसा बढ़ गई है। मंत्रालय संभालने के बाद मंत्री रिग्मी ने बताया कि महिला सुरक्षा सेवा कार्यक्रम को बजट सहित लागू किया गया है और महिलाओं के लिए आवंटित होने वाले बजट को बढ़ाया गया है। उन्होंने बताया कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने बच्चों के लिए नीति और विकलांग व्यक्तियों के लिए नीति 2079 को मंत्रिपरिषद से पास करने, बाल गृहों के संचालन के लिए न्यूनतम मानक बनाने और ज्येष्ठ नागरिकों की देखभाल उनके बच्चों द्वारा न किए जाने की सूरत में उनकी जिम्मेदारी स्थानीय सरकार द्वारा उठाया जाने लगा नीति बनाने का काम किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री रेग्मी ने यह भी बताया कि पहली बार लैंगिक और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बजट आवंटित किया गया है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो 4G नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्या आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री जीवनराम श्रेष्ठ ने कहा कि देश के पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए नवीन कार्यशैली अपनाने की जरूरत है। आज मंत्रालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री श्रेष्ठ ने कहा कि देश भले ही संघीयता में चला गया है लेकिन काम में पुरानी परंपरा बरकरार है और पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए नए तरीके से काम करने की जरूरत है। मंत्री श्रेष्ठ ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में सुधार के लिए संघ, प्रदेश और स्थानीय तहों के बीच आपसी समन्वय और सहकार्य होना जरूरी है। सुदूर पश्चिम प्रदेश के विभिन्न जिलों में भुआ पर्व का रौनक छाया हुआ है। हर साल पूस में सात दिनों से अधिक समय तक यहां भुआ खेला जाता है। युद्धकालीन अभ्यास संस्कृति के रूप में इस पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है। हाथ में तलवार और ढाल लिए सामूहिक रूप से स्थानीय बाजे के ताल पर भुआ खेला जाता है। भुआ पर्व विशेष रूप से सुदूर पश्चिमी प्रदेश के पहाड़ी जिलों अछाम, बाजुरा, डोटी और बझांग में मनाया जाता है। पिछले कुछ सालों से पहाड़ों से तराई में बसे लोग भी तराई में भुआ महोत्सव मनाने लगे हैं। सरकार ने नागरिकों को शीतलहर, हिमपात और अत्यधिक ठंड से बचाने के लिए विभिन्न जिलों को विपद व्यवस्थापन कोष से खर्च करने की अख्तियारी दी है। मंत्रिस्तरीय निर्णय के बाद गृहमंत्री बालकृष्ण खान ने शीतलहर, हिमपात और अत्यधिक ठंड के आधार पर विभिन्न जिलों को 3 तहों में विभाजित करने के बाद इसी अनुरूप वितरण करने की अख्तियारी प्रदान की। कुहासे और शीतलहर के कारण तराई मधेश के लोगों का जनजीवन कष्टकर बनता जा रहा है। अत्यधिक ठंड की वजह से सर्दी, जुकाम, निमोनिया से पीड़ित मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। ये जानकारी प्रादेशिक अस्पताल मलंगवा के प्रमुख डॉक्टर नवल किशोर झा ने दी। आज संघीय संसद सचिवालय में प्रतिनिधि सभा के ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबरा ने प्रतिनिधि सभा के 2 सदस्यों महेंद्र राय यादव और राम कुमार राय को पद तथा गोपनीयता की शपथ दिलाई। बता दें कि दोनों ही नवनियुक्त सदस्य कल शपथ ग्रहण नहीं कर पाए थे। इमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने कहा कि समाज रूपांतरण में साहित्य की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आज पोखरा में आयोजित नेपाल लिटरेचर फेस्टिवल में अध्यक्ष ओली ने बताया कि उन्हें कला, साहित्य और संगीत में बहुत रुचि है। करीब 1 महीने से बंद पड़ा हेटौड़ा सीमेंट उद्योग आज से पुनः संचालित हुआ है। हेटौड़ा सीमेंट उद्योग के नायब महाप्रबंधक नवीन कुमार कर्ण ने बताया कि पिछले महीने काम के दौरान कुछ उपकरणों में आग लग जाने के कारण उत्पादन बंद था। बता दें कि नेपाल सरकार ने विक्रम संवत 2032 में हेटौड़ा सीमेंट उद्योग की स्थापना की थी और विक्रम संवत 2043 मार्ग शीर्ष से व्यावसायिक रूप में काम शुरू हो गया था। फिनलैंड नेपाल में बच्चों को दी जाने वाली स्तरीय सेवाओं में बढ़ोतरी के लिए 4.2 मिलियन यूरो का सहयोग करेगा। आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में नेपाल के लिए फिनलैंड के राजदूत रीना रिक्का हिक्का और नेपाल के लिए यूनिसेफ प्रतिनिधि उषा मिश्रा ने समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए। यह सहयोग सन 2023 से 5 वर्षों तक के लिए जारी रहेगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कोविड-19 महामारी और अन्य प्रकोप से प्रभावित बच्चों को लक्षित कर विद्यालय की आधारभूत शिक्षा और समावेशी शिक्षा को शामिल किया जाएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारतीय राज्य सिक्किम के उत्तरी इलाके में भारतीय सेना के एक ट्रक के गहरी खाई में गिर जाने से 16 जवानों की मौत हो गई है। भारतीय सेना के ईस्टर्न कमांड की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि घटना उत्तरी सिक्किम के जेमा में हुई। बयान में कहा गया है, दुर्घटनाग्रस्त होने वाली गाड़ी 3 गाड़ियों के काफिले का हिस्सा थी। काफिला चैटेन से थांगो की ओर जा रही थी। जेमा के पास एक मोड़ पर गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। घटनास्थल पर बचाव दल को भेज दिया गया है। 4 घायल जवानों को हेलीकॉप्टर से वहां से निकाला गया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक बंदूकधारी ने खुलेआम फायरिंग की है, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। गोलीबारी की यह घटना पेरिस के एक कुर्द सांस्कृतिक केंद्र के करीब हुई। यह जगह पेरिस के ग्याह द लिस्थ रेलवे स्टेशन से ज्यादा दूर नहीं है। पुलिस ने घटना के फौरन बाद संदिग्ध हमलावर को हिरासत में ले लिया। संदिग्ध की उम्र 69 साल बताई जा रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे घटनास्थल के इलाके में जाने से बचे। रिपोर्टों के अनुसार पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति से हमले के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार को बरामद कर लिया है। अभियोजन विभाग ने जानकारी दी है कि उन्होंने हत्या की जांच शुरू कर दी है। चीन में कोरोना संक्रमण अब तक की सबसे तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। पिछले हफ्ते वहां लगभग 10 लाख कोविड के नए मामले आए और अब तो यहां तक दावा किया जा रहा है कि वहां आने वाले दिनों में कोरोना का संक्रमण पीक पर पहुंच सकता है। चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि देश में आने वाले कुछ महीनों में कोविड 19 से 80 करोड़ लोग संक्रमित हो सकते हैं। कई जानकार तो ये भी डर जता रहे हैं कि कोरोना की इस लहर से चीन की लगभग 60% आबादी प्रभावित हो सकती है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई सरकार गठन के सिलसिले में राजनीतिक पार्टियां विचार विमर्श में हैं व्यस्त। सरकार गठन और शक्ति के बंटवारे के विषय में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देववा और माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड के बीच हुआ विचार विमर्श। समाज रूपांतरण के लिए संचार जगत की भूमिका महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी का कथन। और भारतीय राज्य सिक्किम में भारतीय सेना के एक ट्रक के गहरी खाई में गिर जाने से 16 जवानों की मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। अब 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली भाषा में समाचार। शुभरात्रि।